भारतीय समाज में नारी की स्थिति, पृष्ठ संख्या 41। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति विभिन्न कालों में और विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न प्रकार की रही है। वैदिक समय में उसे शक्ति, ज्ञान एवं संपत्ति के प्रतीक के रूप में क्रमशः दुर्गा, सरस्वती एवं लक्ष्मी के रूप में माना गया। पृष्ठ संख्या 42। बाद में पुराण युग तथा मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति में अवनति पाई गई। अंग्रेजों के आगमन के बाद अपने धर्म की रक्षा हेतु ब्रह्म समाज, आर्य समाज तथा प्रार्थना समाज आदि जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन उठ खड़े हुए, उनके कारण उनकी स्थिति में फिर कुछ सुधार हुआ है। हेडिंग है वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समकक्ष थी और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार भी प्राप्त थे। इसी कारण हिंदी समाज में उसे अर्धांगिनी कहा गया है। उस समय लड़कियों के भी उपनयन संस्कार होते थे और वे भी ब्रह्मचर्याश्रम में लड़कों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर P.N. प्रभु ने इस संदर्भ में बताया है कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस काल में स्त्री पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त थे। संदर्भ ग्रंथ हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर P.N. प्रभु पृष्ठ संख्या 258। सह शिक्षा का प्रचलन था। लड़कियों का विवाह युवावस्था में होता था और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता भी थी। विधवा अपनी इच्छानुसार पुनर्विवाह कर सकती थी। निःसंतान स्त्रियों को नियोग द्वारा संतान प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी। पत्नी के रूप में स्त्री की स्थिति काफी सुदृढ़ थी। अर्थव वेद के एक सूक्त में कहा गया है हे नववधु, तू जिस घर में जा रही है वहाँ की साम्राज्ञी है। तेरे सास ससुर, देवर तथा अन्य व्यक्ति तुझे साम्राज्ञी मानते हुए तेरे शासन में आनंदित हो। संदर्भ ग्रंथ अथर्व वेद सूक्त संख्या 74/14। धार्मिक कार्यों में भी पुरुष स्त्री के समान अधिकार थे और धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में पत्नी का होना गृहस्थ के लिए परम आवश्यक था। रामायण में भी अश्वमेघ यज्ञ के समय सीता की अनुपस्थिति में उसकी मूर्ति को रखे जाने का उल्लेख मिलता है। इस युग में विदुषी स्त्रियां भी मिलती हैं। डॉक्टर उमा देशपांडे के अनुसार वैदिक युग में केवल ऋग्वेद में ही 27 कवित्रियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें घोषा, विश्ववारा, अपाला, अदिति, जूहू, उर्वशी, लोपामुद्रा, श्रद्धा, मेधा, यमी आदि का उल्लेख है। डॉक्टर श्रीमती देशपांडे ने द ग्लिम्स ऑफ इंडिकोलॉजी हेरिटेज नामक अपने ग्रंथ में लिखा है Men and women were afforded equal opportunities for study and so that the courage of study for both were practically the same. Specially in the field of higher studies, women too studied the Vedas, the Brahmas and the Upanishads together with the Vedangas which are enumerated in the Mundaka Upanishad. Sandarbh Granth Vahi Prishtha Sankhya 2। अतएव कहा जा सकता है कि वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति धार्मिक सामाजिक दृष्टि से काफी सुदृढ़ थी। उत्तर वैदिक काल सन 600 BC से सन 300 AD तक का समय उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर A.M. अलतेलकर ने इस समय की स्त्रियों की स्थिति पर विचार करते हुए कहा है पुरुषों के युद्ध कार्यों में संलग्न रहने के कारण इस काल की स्त्रियां कृषि, युद्ध साम्राज्ञी का निर्माण तथा अन्य आर्थिक व्यवसायिक कार्यों में नियोजित रहती थी और इस प्रकार समाज की उपयोगी सदस्य होने के कारण समाज में उनका समुचित आदर एवं स्थान था। संदर्भ ग्रंथ द पोजिशन ऑफ वुमेन इन द हिंदू सिविलाइजेशन डॉक्टर A.S. अलतेलकर पृष्ठ संख्या 342 से 343। इस समय भी पृष्ठ संख्या 43 स्त्रियों को धार्मिक एवं वैवाहिक जीवन में काफी स्वतंत्रता थी। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म कहते हैं जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है तथा इनकी अनुपस्थिति में सभी कार्य पुण्य रहित हो जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ महाभारत अनुशासन पर्व 46:5। इस समय जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इन धर्मों में स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, परंतु इन धर्मों के पतन के साथ ही स्त्रियों की स्थिति में भी गिरावट प्रारंभ हुई। डॉक्टर अलतेलकर ने बताया है कि आर्य गृहों में अनार्य स्त्रियों के प्रवेश से स्त्रियों की स्थिति में अवनति का प्रारंभ हुआ। यह अवनति ईसा पूर्व 1000 वर्ष से प्रारंभ होकर धीरे धीरे अति सूक्ष्म रूप से बढ़ती गई और लगभग 500 वर्षों के बाद उसके लक्षण स्पष्ट रूप से सामने आने लगे। पैराग्राफ चीन। वस्तुतः मनुस्मृति में सर्वप्रथम स्त्रियों की स्वतंत्रता पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। उन्हें वेदाध्ययन और यज्ञ क्रिया से रोक दिया गया। उनके अनेक धार्मिक सामाजिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया। विधवा विवाह पर प्रतिबंध आ गया और रजस्वला होने के पूर्व लड़की के विवाह का विधान कर दिया गया। अब पति की आज्ञा का पालन और पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह ही उनके कार्य क्षेत्र में रह गया। अतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम वर्षों से स्त्रियों की स्थिति में अवनति का प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, धर्म शास्त्र काल। ईसा के पश्चात 3री सदी से लेकर 11वीं सदी के पूर्वार्ध तक के समय को भारतीय इतिहास में धर्मशास्त्र काल के नाम से जाना जाता है। अब वैदिक नियमों की अपेक्षा होने लगती है और सामाजिक धार्मिक व्यवहारों में मनुस्मृति को प्राधान्य मिलने लगता है। अनेक प्रकार की सामाजिक एवं धार्मिक संकीर्णताएं इस युग में प्रवेश पाती हैं। स्त्रियों की स्थिति निम्न से निम्नतर होती जाती है। वे अब नितांत परतंत्र एवं निसहाय समझी जाती हैं। मनुस्मृति के समय से यह स्थापित हो गया कि पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में उसकी विधवा का कोई अधिकार नहीं होगा। उसे पूर्णतया अपने परिवार वालों या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। प्रेमचंद की बेटों वाली विधवा नामक कहानी में मनु की इस व्यवस्था की अमानवीयता को लेखक ने गहरी संवेदना के साथ उकेरा है। पहले पुरुषों की भांति स्त्रियों के भी कई संस्कार होते थे। अब उनके लिए एकमात्र संस्कार रह गया, विवाह। वैदिक काल में प्रेम विवाह का प्रचलन था। विवाह पूर्व प्रेमी के लिए जार शब्द का प्रयोग होता था। उसका अर्थ प्रेमी होता था। ऋग्वेद में कहीं भी जार शब्द का अनैतिक अर्थ नहीं मिलता, परंतु धर्मशास्त्र काल में जीवन साथी के चुनाव में लड़की की इच्छा अनिच्छा का कोई प्रश्न नहीं रहा। विवाह की आयु भी 12 से 10 वर्ष की हो गई। कुलीनता की गलत धारणा के कारण बहुपत्नी विवाह ब्रैकेट में पॉलीगैनी का प्रचलन बढ़ा। विदुर लोग भी 8 या 10 वर्ष की कन्या से शादी करने लगे। संपन्न तबके के रखेल का फैशन चल निकला। दूसरी तरफ ईसा के 1000 वर्ष बाद अभिजातीय परिवारों में विधवाओं के पुनर्विवाह सदंतर बंद हो गए। कुछ निम्न जातियों ने उच्च जातियों का अंधानुकरण किया, पृष्ठ संख्या 44, और ऐसे विवाहों का प्रतिबंध लगाया। इस काल में पातिवृत्य का एक तरफा आदर्श प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार धर्मशास्त्र काल में शास्त्रकारों ने स्त्रियों की सामाजिक धार्मिक स्थिति को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मनु ने कहा कि स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए। उन्हें बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। इस प्रकार 3री शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक धर्मशास्त्रों के काल में स्त्रियों की सामाजिक धार्मिक अवस्था निरंतर गिरती गई। नेक्स्ट हेडिंग, मध्यकाल। 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के समय को इतिहास में मध्यकाल ब्रैकेट में मिडिवल पीरियड कहा जाता है। यह ध्यानार्थ है कि भारतीय इतिहास का मध्यकाल ठीक ठीक वही नहीं है जो हिंदी साहित्य के इतिहास का मध्यकाल है। मुसलमानों के आक्रमण के साथ इस मध्यकाल की शुरुआत होती है। विधर्मियों से हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करने के नाम पर स्त्रियों पर और भी कई निर्योग्यताएं थोपी गई। उन्हें शिक्षा के अधिकार से बिल्कुल वंचित किया गया। 5 या 6 वर्ष की अबोध कन्याओं के भी विवाह होने लगे, बल्कि रक्त की शुद्धता के नाम पर बाल विवाहों को प्रोत्साहित किया जाने लगा। इस समय मुसलमानों की देखा देखी हिंदुओं में भी पर्दा प्रथा दाखिल हो गई। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र सीमित होकर चार दीवारी में बंद हो गया। विधवाओं के पुनर्विवाह पर एकदम रोक लगा दी गई। सती प्रथा का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। इस काल में धर्म के नाम पर स्त्रियों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ। इस प्रकार 18वीं शताब्दी तक स्त्रियों की स्थिति में लगातार गिरावट आती गई। यद्यपि माता पिता उसे दुलारते थे, पति उसे प्रेम करता था और बच्चे उसका पालन और आदर करते थे, परंतु यह सब आदर्शात्मक स्थिति में होता था। दया, सहानुभूति और अनुकंपा से होता था, उनका कोई अधिकार नहीं था। डॉक्टर A.S. अलतेलकर ने कहा है कि सती प्रथा की प्रचलन, पुनः विवाह पर प्रतिबंध, पर्दा प्रथा के विस्तार तथा बहुपत्नी विवाह की व्यापकता के कारण स्त्रियों की स्थिति में गुणात्मक अवनति दृष्टिगत होती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ द पोजिशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन डॉक्टर A.S. अलतेलकर पृष्ठ संख्या 359 से 360। नेक्स्ट हेडिंग ब्रिटिश काल। सन 1498 में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पदार्पण किया। उसने वहां के राजा झोमोरिन से संपर्क स्थापित करके पुर्तगीजों के लिए व्यापार का परवाना ले आया। उसके बाद डच, फ्रेंच, अंग्रेज आदि कई यूरोपीय जातियां समुद्री मार्ग से भारत में आने लगी। मुगल बादशाह जहांगीर के समय सर हॉकिंस नामक एक अंग्रेज व्यापार का आदेश प्राप्त करने हेतु उनके दरबार में आया था, जिसे बादशाह ने मना कर दिया था, परंतु उसके प्रयत्न लगातार चालू रहे और शाहजहां के समय में उन्हें व्यापार करने का आदेश मिल गया। फिर उन्होंने सूरत, मद्रास, कलकत्ता आदि नगरों में अपनी कोठियां स्थापित की। प्रारंभ में पुर्तगीजों, फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच कुछ स्पर्धात्मक लड़ाइयां हुई। पुर्तगीजों ने स्वयं को द्वीप, दमन और गोवा तक सीमित रखा, अतः वास्तविक स्पर्धा फ्रेंचों और अंग्रेजों के बीच हुई। फ्रेंच सेनापति दुपले को पराजित कर वॉरेन हेस्टिंग्स ने पृष्ठ संख्या 45 अंग्रेजों की सर्वोपरिता को स्थापित कर दिया। मुगल साम्राज्य अपने पतन पर था। दक्षिण में मराठे, पंजाब में सिख तथा राजस्थान, हरियाणा में जाट सरदार सिर उठा रहे थे। इस प्रकार मुगल संतलत खंड खंड हो रही थी। उस समय अंग्रेजों ने 1757 में अमीचंद तथा मीर जाफर को अपने पक्ष में लेते हुए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और भारत के पूर्वांचल पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार बनारस, लखनऊ, आगरा सैर करते हुए सनय सनय उन्होंने समूचे देश पर कब्जा कर लिया। अपनी सत्ता की सलामती को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज लोग यहाँ के लोगों के धार्मिक, सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते थे। अतः स्त्रियों पर थोपी गई पहले की निर्योग्यताओं में कटौती नहीं हुई, बल्कि कहीं कहीं तो वृद्धि ही हुई। परंतु अंग्रेजों के आगमन का एक परोक्ष प्रभाव यहाँ की स्त्रियों की स्थिति पर पड़ा, जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा। अंग्रेज पादरी अपने धर्म प्रचार के लिए हिंदू धर्म की कुछ एक कुरीतियों पर प्रहार करते थे। दूसरी तरफ अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार से यहाँ के कुछ लोग पाश्चात्य साहित्य एवं दर्शन से परिचित हुए, अतः अपने धर्म एवं समाज की रक्षा हेतु कुछ धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुए, जिनके कारण स्त्रियों की स्थिति में कुछ सुधार हुए। ऐसे महानुभावों में राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, नवीन चंद्र राय आदि मुख्य हैं। बाद में ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आदि भी इस क्षेत्र में आए। पैराग्राफ चेंज। अंग्रेजों के समय में जो निर्योग्यताएं ब्रैकेट में डिसेबिलिटीज स्त्रियों पर थी, वे निम्नलिखित हैं। पहला, सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों को कोई खास अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें शिक्षा प्राप्ति का भी अधिकार नहीं था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा की प्रवृत्ति अधिक बलवती नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व स्त्रियों में साक्षरता केवल 6% थी। उसमें भी उच्च वर्ग की तुलना में निम्न वर्ग की स्त्रियों में साक्षरता का प्रमाण नहीं था। दूसरा, पारिवारिक क्षेत्र में स्त्रियों को खास अधिकार नहीं थे। पारिवारिक व्यवस्था के केंद्र में पुरुष था। स्त्रियों का कार्य संतानोत्पत्ति एवं परिवारजनों की सेवा तक मशहूर था। स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार भी नहीं था। फलतः दुष्ट, चरित्रहीन, क्रूर, अत्याचारी, असाध्य रोग से पीड़ित तथा नपुंसक पति के साथ भी उसे अनुकूलन स्थापित करना ही पड़ता था। तीसरा, सन 1937 के पूर्व आर्थिक क्षेत्र में भी स्त्रियों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। स्त्री धन के अलावा परिवार की संपत्ति पर भी उसे कोई अधिकार नहीं था। डॉक्टर मन्नन नाथ गुप्त ने भारतीय स्त्रियों में स्वर्णालंकारों के प्रति जो मोह है उसका बखूबी विश्लेषण करते हुए बताया है कि उसके पीछे भी हमारी समाज व्यवस्था ही कारणभूत है। जिस समाज में स्त्री का अपनी पारिवारिक संपत्ति पर कोई अधिकार न हो वहां पर स्वर्णालंकार ही आड़े दिनों में काम आ सकते हैं। सर्वप्रथम सन 1924 में हरविला सारदा ने स्त्रियों के समान अधिकार को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया था जो सन 1937 में सारदा बिल के नाम से पारित हुआ, पृष्ठ संख्या 46, जिसमें स्त्रियों को अपने पति की संपत्ति में अधिकार देने की बात थी। तब जागरण में प्रेमचंद ने सारदा बाबू को बधाई देते हुए लिखा था, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, स्त्रियां आपकी हमेशा कृतज्ञ रहेंगी, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर जिस संपत्ति को जोड़ते हैं, पति के मर जाने के बाद उन्हीं की गोद के बच्चे उनसे मुंह छिपाते हैं। यह प्रस्ताव जिस दिन पास होगा, करोड़ों महिलाएं आपको हृदय से आशीर्वाद देंगी और आपकी सहृदय कृतज्ञ रहेंगी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, पृष्ठ संख्या 162, पैराग्राफ चेंज। स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार तो नहीं थे, ऊपर से तुर्रा यह कि उच्च कुल की स्त्रियां कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती थी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। कुलीनता के विचार इसमें बाधक थे। डॉक्टर के एम पन्नीकर ने लिखा है कि हिंदू समाज में पुत्री के अधिकार को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया था। पत्नी पति के परिवार का एक अंग बन गई थी और विधवाओं को मृतक के समान माना जाता था। चौथा, जब जीवन के अन्य क्षेत्रों में स्त्री को नगण्य समझा जाता था तो राजनीतिक गतिविधियों में तो स्त्रियों के हिस्सेदारी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए विविध आंदोलनों में कुछ स्त्रियों ने भाग अवश्य लिया था, परंतु वे तमाम स्त्रियां प्रायः उच्च वर्ग से संबंधित थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश काल में स्त्रियों पर पहले से चली आ रही अनेक निर्योग्यताएं थी, परंतु ईसाई धर्म प्रचार प्रसार के विरुद्ध जो पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियां विकसित हुई उसके कारण स्त्रियों को कुछ राहत मिली।